कब होगी इस नरक सफाई से मुक्ति। आज देश में दलित प्रश्न एक बार पुनः उभर कर केंद्र में आ गया है। 1999 के 13वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम भी इसी ओर इंगित करते हैं। उत्तर प्रदेश में 85 में से कम आधे संसद सदस्य किसी न किसी रूप में दलित शक्ति के प्रदर्शन के रूप में लोकसभा में पहुंचे थे। दलित प्रश्न केंद्र में तो जरूर आया है, लेकिन इस प्रश्न पर सैद्धांतिक चर्चाएं अधिक हो रही हैं। इस प्रश्न के पीछे जो भयावह व क्रूर सामाजिक यथार्थ है, उस यथार्थ को व्यवहारिक रूप से बदलने संबंधी चर्चा बहुत कम सामने आ रही है। अंग्रेजों में दलित प्रश्न के दो स्तर पर उभरा। एक तरफ महात्मा गांधी व गांधीवादियों ने दलित प्रश्न को हरिजन प्रश्न बनाकर प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर डॉक्टर अम्बेडकर ने इस प्रश्न को सामाजिक क्रांति की अनिवार्यता के रूप में जुझारू ढंग से सामने रखा। गांधी और गांधीवाद के तमाम मतभेदों के रहते भी वामपंथियों को एक बात अवश्य मान लेनी चाहिए कि गांधी और गांधीवादियों ने दलित समस्या की वेदना को उनसे कहीं अधिक समझा। भले ही सुधारक दृष्टि से हो, हरिजन बस्तियां बसाना, उनके बीच जाना, अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए समाज सुधार आंदोलन चलाना आदि व्यावहारिक कदमों द्वारा गांधी जी व उनके अनुयायियों ने दलितों में अपने लिए सम्मानजनक जगह बनाई। भले ही इसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक हितों के लिए वोट बैंक के रूप में करती रही, लेकिन इस वोट बैंक की सामाजिक स्थितियों में सुधार के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के दौरान विशेष ठोस कदम नहीं उठाए। दलितों में भी दो श्रेणियां हैं। स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर ने इन्हें शूद्र व अतिशूद्र कहा है। अतिशूद्र समाज के निम्नतर तल पर धकेल दिया गया वह दलित वर्ग है, जिससे छू जाने भर से पूरा हिंदुत्व डोल जाता है और बिना नहाए उसका पुनः संतुलन स्थापित नहीं होता। ऐसे वर्गों में डोम, चांडाल और भंगी आदि जातियां आती हैं। इनमें से भंगी या मेहतर जाति की संख्या अत्यधिक होने व अपने अनिवार्य सामाजिक दायित्व के कारण उनका वास्ता तथाकथित उच्च वर्गीय समाज से सुबह से शाम तक पड़ता ही रहता है। दलित वर्गों में जितने अधिक सामाजिक अपमान का कड़वा घूट भंगी या मेहतर समाज को पीना पड़ता है, उतना शायद दलित वर्गों में से किसी अन्य को नहीं। और जितना अधिक सामाजिक रूप से उपयोगी काम भंगी समाज करता है, उतना शायद उपयोगी कोई अन्य सामाजिक धर्म नहीं करता। यह भी विडंबना है कि जिस प्रकार का सामाजिक श्रम भंगी समाज करता है, उसका मूल्य जितना समाज को देना चाहिए उसका 20वां हिस्सा भी उसे नहीं दिया जाता। उच्च वर्ग के भारतीय इंग्लैंड में जाकर या अमेरिका जाकर गटर सफाई का काम स्वेच्छा से कर लेते हैं, क्योंकि वहां ऐसे श्रम का मूल्य अर्थात वेतन बहुत अधिक मिलता है। लेकिन यह भारत ही ऐसा महान देश है जो सफाई व शुचिता का सर्वाधिक पाखंड करता है, लेकिन यहाँ के अपने सफाई कर्मचारियों को इतना वेतन देने को भी तैयार नहीं कि वे अपना जीवन मानवीय सम्मान के साथ जी सके। शूद्रों में अतिशूद्र भंगी समाज की दशा पर अनेक पुस्तकें रची गई हैं। अमृतलाल नागर का उपन्यास नाच्यो बहुत गोपाल भंगी समाज की दुर्दशा चित्रित तो करता है, लेकिन उपन्यास में रोमांस की प्रधानता यथार्थ चित्रण के ऊपर भारी है। भंगियों के जीवन की दुर्दशा को उभारने वाली मराठी पुस्तक नरक सफाई का हाल भी हिंदी में अनुवाद प्रकाशित हुआ है, जो यथार्थ स्थिति के प्रति आंखें खोलने वाला तथ्यात्मक विवरण है। इसी प्रकार 1981 में जालंधर से भगवान दास की पुस्तक मैं भंगी हूँ छपी थी, जो चर्चा तो हुई लेकिन कम चर्चित प्रकाशन गृह से छपने के कारण व्यापक पाठकों तक यह पुस्तक नहीं पहुंच सकी थी। यद्यपि देशभर के दलित कार्यकर्ताओं के पास यह पुस्तक पहुंची थी व गुजराती, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाओं में इसके अनुवाद भी छप गए थे, अब इसी पुस्तक का संशोधित व संवर्धित संस्करण 1998 में लखनऊ से छपकर सामने आया है। हिंदी में प्रकाशित ये दोनों पुस्तकें दलित विमर्श के जीवन के व्यावहारिक पक्षों को सामने लाने वाली हैं। दलित प्रश्न केवल बौद्धिक विमर्श का प्रश्न नहीं है, दलित प्रश्न व्यवहार रूप में पूरी सामाजिक संरचना को इस रूप में बदलने का है जहां मनुष्य के आत्मसम्मान, उसकी अस्मिता को उसके पेशे या जाति के कारण कुचला न जाए। इन दोनों पुस्तकों में दलित समस्या के सबसे संवेदनशील पक्षों को उभारा गया है। पहला प्रश्न तो यही उठता है कि भंगी या मेहतर जाति है या पेशा। पूरे दलित समाज संबंधित साहित्य में भी यह प्रश्न बार बार उठाया गया है। स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ऐसी धारणाएं रखी हैं कि दलित कभी उच्च जाति व्यक्ति थे जिन्हें सामाजिक परिस्थितियों ने दलित या निम्न जाति दर्जा दिलवाया है। वैसे उच्च जाति के अतीत की बात कहकर दलित समाज उच्च जाति या जाति विभाजित समाज के जाल में फंसने वाली बात ही करता है। यदि एक बार यह तर्क मान लिया जाए कि जातियां उच्च या नीच नहीं होती हैं या हो सकती हैं, तो यह ब्राह्मणवाद को स्वीकृति प्रदान करना ही होगा। वह फिर संघर्ष बात तक ही सीमित रहेगा कि कल एक जात उच्च थी तो आज दूसरी जात उच्च मानी जानी चाहिए या फिर कई उच्च कहलाई जाने वाली जातियां इसलिए पिछड़ी जातियों में नाम लिखाने के लिए आंदोलन करेंगी क्योंकि आरक्षण के लाभ उठाने हैं। राजस्थान में जाटों की इसी मांग ने कांग्रेस को चुनाव में करारी चोट तक दे दी। जाति व्यवस्था के अध्ययन से जुड़े हुए अनेक दलित आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता भी यह मानते हैं कि भंगी या मेहता नाम से कोई जाति नहीं थी। समाज के खास मोड़ पर युद्धों में विजेता राजाओं ने पराजित राजाओं, सामंतों या उनकी प्रजा को सामाजिक रूप से अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए ही उन्हें भंगी या मेहतर के रूप में मनुष्य के मल को साफ करने, उसे सिर पर उठाने के निकृष्टतम काम पर लगाया। नाचो बहुत गोपाल में भी भंगी जाति के इतिहास का ऐसा ही खाका खींचा गया है, जहां पराजित क्षत्रिय या राजपूत भंगी बनाए गए हैं। यदि सचमुच इतिहास में ऐसा हुआ तो यह मानना पड़ेगा कि स्वयं को विश्व का सबसे बर्बर और सभ्यतम देश कहलाने का दम भरने वाला महान भारत देश वास्तव में विश्व का सबसे बर्बर और सभ्य देश है, जहां पेशे के नाम पर मनुष्य का मल सिर पर उठाने का ऐसा निकृष्टतम काम दूसरे मनुष्यों से यह कहकर करवाया जाता है कि इस जाति विशेष का काम ही यही है। विश्व में इस समय कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें मनुष्य के मल को सिर पर ढोने की प्रथा हो। गरीब से गरीब देश में भी मनुष्य के मल की सफाई का भारत जैसे सभ्य देश से कहीं बेहतर प्रबंध है, जहां मनुष्य का मल इस तरह से शहरों, कस्बों व गांवों में बिखरा रहता है कि लगने लगता है कि भारत अभी जैविक रूप में पशु अवस्था में अटका है और जैविक पशु से सामाजिक पशु बनने में भी यहां कितना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इन दो पुस्तकों के माध्यम से मनुष्य को निकृष्टतम कर्म में धकेल दिया जाने वाले सामाजिक वर्ग की व्यथा कथा देखें। भगवान दास अपने पुस्तक मैं भंगी हूं को केवल भंगी ही नहीं सभी अछूत जातियों की कहानी कहते हैं। भगवान दास उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, वह दिल्ली में वकालत करते रहे हैं। पूरी दुनिया में घूम घूमकर उन्होंने भारत में अछूत जातियों की दुर्दशा बयान की है। संयुक्त राष्ट्र की उप समितियों में भी उन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया है। 20 से अधिक पुस्तकों का रचयिता भगवान दास डॉक्टर अम्बेडकर के साथ रहे व बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए हैं। मैं भंगी हूँ पहले पहल 1957 में धारावाहिक लेख के रूप में छपी। भदंत आनंद कौशलायन कौशल्यायन भदंत आनंद कौशल्यायन ने उनकी तारीफ की थी। यह पुस्तक वास्तव में आजकल लिखी जा रही आत्मकथा नहीं है बल्कि लेखक की महती खोज व अध्ययन का नतीजा है। इसकी शैली आत्मकथात्मक रखी गई है लेकिन यह आत्मकथा व्यक्तिवाचक न होकर समूहवाचक या जातिवाचक है। लेखक का भंगी यहाँ कोई एक व्यक्ति न होकर पूरी जाति का प्रतीक चरित्र है। भूमिका में लेखक ने कुछ ऐसी पुस्तकों का संदर्भ दिया है जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन दलित विमर्श व दलित आंदोलन से जुड़े लोगों को इन पुस्तकों के पुनः प्रकाशन का प्रयास करना चाहिए। इन पुस्तकों में हजारे कृत एक अछूत की जीवन गाथा, आर ग्रीव द्वारा 1880 में प्रकाशित नाइट्स ऑफ ब्रूम्स, द भंगीज आदि शामिल है। लेखक ने अपने पुस्तक का उद्देश्य भंगी का सच्चा इतिहास तथा कहानी पेश करना बताया है। पुस्तक के पहले अध्याय में स्पष्ट कर दिया है कि धर्म परिवर्तन कर सिख, मुसलमान या ईसाई बनने पर भी भंगी को सामाजिक अपमान से छुटकारा नहीं मिलता। लेखक के अनुसार मुर्दा जानवरों को खींचना, अपराधियों को फांसी चढ़ाना व मलमूत्र का टोकरा सिर पर रखना भंगी का पेशा बनाया गया, जिससे अछूत या अन्य शूद्र भी भंगी से घृणा करते हैं। भंगी के लिए जो अन्य नाम प्रचलित हुए उनमें चूहड़ा, चांडाल, कोटाना, हेला, मखियार, हुमार, महार, मादिगा, कोखा, मांग, हाड़ी, कुरान, धानुक, उलगाना, डोम, रावत, मोयमाली, वाल्मीकि, लालबेगी, शेरण, वलकाना, मुसल्ली, मेहतर, खाकरूप, बेपरवा, हलालखोर, चमादार आदि शामिल हैं। भंगी शब्द की व्याख्या भंग किया गया अंग रूप में की गई है। भगवान दास ने भंगी जाति के प्रति हिंदू धर्म के अत्यंत अत्याचारी व क्रूर स्वरूप का उद्घाटन सुधारण किया व बौद्ध धर्म में मुक्ति का मार्ग देख ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम के प्रसंग भी भगवान दास ने इतिहास से दिए हैं, जिससे ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था फिर मजबूत हुई है। मुसलमान बनने पर अछूतों की दशा में कुछ सुधार होना या उसके लेखक ने संकेत किया है। महात्मा गांधी द्वारा गुजराती भक्त कवि नरसिंह मेहता द्वारा प्रयुक्त हरिजन नाम अछूतों को देने पर भगवान दास को कोई संतोष नहीं है। लेखक के अनुसार अंग्रेजों ने भी अछूतों का इस्तेमाल तो किया लेकिन उनकी जीवन दशा नहीं बदली। भगवान दास ने महात्मा गांधी की इस बात पर सराहना की है कि वे अपने आश्रम में अपना मल स्वयं साफ करते थे और उनके जीवित रहते आश्रम का यह नियम सभी निवासियों पर लागू भी था, लेकिन देहांत के बाद गांधी के आश्रम में ही मल सफाई के लिए भंगी रखे गए। डॉक्टर अम्बेडकर को लेखक अपना सच्चा मुक्तिदाता मानते हैं। लेखक के अनुसार भंगियों के सांस्कृतिक जीवन पर हिंदुओं के तीज त्योहारों का दुष्प्रभाव पड़ा है। उनकी आर्थिक स्थिति यह है कि वे कर्ज में पैदा होते, कर्ज में पलते व कर्ज में ही मर जाते हैं। अपने समाज में शराब आदि कुरीतियों की ओर भी लेखक ने ध्यान दिलाया है। रामायण को लेखक अपनी पुस्तक नहीं मानते, न ही वाल्मीकि को अपना आदर्श व धर्मगुरु। वाल्मीकि को ब्राह्मण धर्म व पूर्ण व्यवस्था का अनुयायी मानते हैं। वाल्मीकि को मेरिट बनाने की होड़ में लगे दलित समाज को भगवान दास की बात की ओर ध्यान देना चाहिए। भगवान दास दृश्य परिवर्तन से समाज के व्यवहार में परिवर्तन को नहीं मानते, वे केवल शिक्षा और संगठन में परिवर्तन का मार्ग देखते हैं। वे सुधार के नहीं क्रांति के पक्षधर हैं। आत्मसम्मान व आत्मविश्वास को वे सबसे बड़ा मित्र मानते हैं। दलित विमर्श के लिए हिंदी पाठकों को मैं भंगियों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कुछ अर्थों में यह पुस्तक अभी हाल में प्रचलित दलित आत्मकथाओं अपने अपने पिंजरे व जूठन से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दलित आंदोलन को दिशा देने वाली किताब है। भारत के भंगियों की दशा पर एक और महत्वपूर्ण पुस्तक इस बीच हिंदी में छपकर आई है। मूल रूप से मराठी में रचित इस पुस्तक को हिंदी में प्रकाश भात ब्रेकर ने रूपांतरित किया है। यह अध्ययन आधारित पुस्तक है जिसे महाराष्ट्र के समता आंदोलन के दो कार्यकर्ताओं अरुण ठाकुर और मोहम्मद खड़ग ने डॉक्टर यदीप फड़के के मार्गदर्शन में लिखा है। इन दो कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र प्रांत में समता आंदोलन के अंतर्गत सुधार की दृष्टि से 1982-85 के दरमियान यह अध्ययन किया, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुस्तक की भूमिका महाराष्ट्र के सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा आढ़ाव ने लिखी है, जिन्होंने यह धारणा रखी है कि भंगी जाति का जन्म उत्तर भारत, विशेषतः दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व गुजरात आदि प्रांतों में हुआ है। यद्यपि भंगी जाति के लोग स्वयं को राजपूत कुल में उत्पन्न बताते हैं और युद्धों में पराजय के फलस्वरूप प्रताड़ित करने के लिए भंगी बना दिए जाने की बात कहते हैं। डॉक्टर बाबा आढ़ाव के अनुसार भारत में छुआछूत की भावना तीन कारणों से विकसित हुई है। दर्जा, सामाजिक दर्जाबंदी को मानने वाला दर्शन, सामाजिक परानुक्रम, पतित भ्रष्ट कल्पनाएं। डॉक्टर फड़के, जिनके मार्गदर्शन में यह अध्ययन संपन्न हुआ, ने महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन के रूप में सफाई समस्या को सुलझाने संबंधी राष्ट्रीय आंदोलन से उद्धरण दिए। गोपाल गणेश आगरकर ने 1893 में अपने पत्र सुधारक में पृथ्वी पर नरक की कल्पना बाल्टी या टोकरी वाले शौचालय के रूप में की। मार्च 1913 में स्वतंत्रता सेनानी सेनापति बापट ने महात्मा गांधी से बहुत पहले सफाई के लिए झाड़ू उठाया तो उम्र भर नहीं छोड़ा। गाड़गे महाराज, मरना साहब फड़के, वीन बरले व आपा साहब पटवर्धन आदि ने भी सफाई के काम को खुद सफाई कर आगे बढ़ाया। लेखक द्वय ने बताया कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति सूची में 59 जातियां हैं, जिनमें सफाई काम से संबद्ध जातियों की संख्या 1981 में 1,76,000 बताई गई थी, जिनमें अकेले मुंबई में ही 77,000 से ज़्यादा सेवक रहते थे। नरक सफाई से जुड़े लोगों में केवल 4,894 लोग मैट्रिक पास थे व 344 स्नातक थे। डॉक्टर फड़के ने बताया कि सिर पर मैला ढोकर नरक सफाई का काम करने वालों में हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों शामिल हैं। पंजाब में 1981 की जनगणना के अनुसार 13.5 लाख मजहबी सिखों में केवल 10,000 लोग नरक सफाई के काम में लगे थे। वाल्मीकि, चुहड़ा व भंगी जातियों के 21,000 लोग अभी इस पेशे में हैं। मनुष्य के मलमूत्र की सुचारू ढंग से साफ करने की व्यवस्था विश्व की सभ्यता के आगे एक बड़ा सवाल रहा है। अनुमान तो यह है कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता में मल निकासी की सुचारू व्यवस्था थी। यूरोप में भी मल निकासी की आधुनिक सुचारू व्यवस्था 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच विकसित की गई। भारत में भंगी जाति की उत्पत्ति संबंधी इस पुस्तक में भी चर्चा की गई है। गुजरात में बांस को तोड़कर टोकरियां बनाने वाले को भंगी कहा गया। भारत में बड़े शहरों के विकास के साथ मनुष्य के मलमूत्र की सफाई की गंभीर समस्या पैदा हुई। 1662 में पुर्तगालियों द्वारा इंग्लैंड को मुंबई नगर उपहार में दिए जाने के बाद अंग्रेजों ने वहां व्याप्त बीमारी से मरने वालों की बड़ी संख्या के मद्देनजर सफाई की व्यवस्था करने का प्रयास किया। 1850 के आसपास मुंबई में गंदगी का इस कदर बोलबाला था कि हर साल कई हजार लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने लंदन में तो 14वीं सदी में भूमिगत सीवरेज बना दिया, भारत में उन्होंने इसकी कोई कोशिश नहीं की। यहाँ पर सफाई के लिए नगर पालिकाओं द्वारा दो प्रकार के सफाई सेवक, बड़े बुहारे जो सिर्फ सड़कों गलियों को बुहारते थे और भंगी जो मानवीय मलमूत्र को सिर पर ढोकर सफाई करते थे। इसी भंगी कर्म के कारण समाज में अस्पृश्यता का बहुत अधिक चलन हुआ और भंगी जाति को अस्पृश्यों से भी अस्पृश्य समझा गया, जिनके साथ अन्य दलित जातियां भी अस्पृश्यता का व्यवहार करती थी। अरुण ठाकुर और मोहम्मद खड़स ने एक समाज का उदाहरण दिया है जो कहता है, हम भंगियों को नहीं छूते, विहीन निकृष्ट जाति के हैं। लेकिन भंगी या मलमूत्र सफाई का काम किसी जाति ने खुशी से तो नहीं संभाला। आर्थिक बदहाली, देश में बार बार पड़े भीषण अकालों ने अनेक लोगों को इस निकृष्टतम काम को अपनाने के लिए मजबूर किया। भंगी जाति है या पेशा यह अभी भी विवाद है, लेकिन यह ऐसा पेशा ऐसा निकृष्ट है कि किसी जाति ने भी इसे अपनाया उसका दर्जा गिरकर भंगी हो गया। भंगी जाति व उनके पेशे संबंधित संवेदना महाराष्ट्र के समाज सुधारकों व बाद में गांधी व गांधीवादियों ने दिखाई। इस संबंध में गांधीवादियों ने अध्ययन भी प्रस्तुत किए। एनआर मलकानी की अंग्रेजी व हिंदी में प्रकाशित पुस्तक स्वच्छ लोग अस्वच्छ देश व वीएन बर्वे द्वारा महाराष्ट्र सरकार के भंगी जाति की जीवन दशा पर तैयार जांच समिति की रिपोर्ट इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इसमें दोनों विद्वानों ने समस्या के सभी पहलुओं पर बारीकी से ध्यान देकर सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी अपनी सिफारिशें दी। महाराष्ट्र में 2 अक्टूबर 1963 से पहले सिर पर मैला ढोने की पद्धति समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। महाराष्ट्र में 123 न्यायपालिकाएं हैं। 1982-85 में किए अध्ययन के समय भी पुस्तक लेखकों ने महाराष्ट्र में इस प्रथा को बदस्तूर जारी देखा। न सिर्फ यह घृणित प्रथा ही जारी थी, भंगियों के लिए रबड़ के दास्तानों या मैला समेटने के स्क्रैपर या मैला ढोने के ठेले जैसी अनिवार्य चीजें भी उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। महाराष्ट्र हिंदू शौचालय धरती पर साक्षात नरक है। इसी नरक की हर रोज सफाई करने वाले कर्मचारियों का वेतन कायदे से किसी आईएएस अधिकारी या मंत्री से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी की दर से भी वेतन नहीं मिलता, इस सामाजिक काम के लिए उन्हें समाज द्वारा सर्वोच्च स्थान में दिया जाना चाहिए, उसके बदले उन्हें मिलता है छुआछूत का व्यवहार, दूर दूर कर दूर हटाने का अपमान। इसी भंगी कर्म के कारण उन्हें विषाक्त गैसों से दोचार होना पड़ता है और अनेक बीमारियों का शिकार भी होते हैं। एनआई मलकानी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, दूसरे किसी मुल्क में न कभी भंगी थे न आज हैं, किंतु हमारे यहाँ हैं। यह हम मानकर चलते हैं कि दुनिया में हम ही सबसे पाक साफ हैं। हमारा दम और अहंकार जितना महान है उतना ही हमारा पतन भी महान है। यह एक सच्चे गांधीवादी के उद्गार है। गांधीवादियों ने भंगी व्यवसाय को 2 चरणों में समाप्त करने की योजना बनाई, भंगी कष्ट मुक्ति, भंगी मुक्ति। भंगी कष्ट मुक्ति के चरण में आधुनिक शौचालय बनाने व भंगी कर्म में सहूलतें देने की बात थी। वह भंगी मुक्ति कार्यक्रम में इस पूरे व्यवसाय को आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा समाप्त कर उन्हें अन्य उत्पादक व्यवसायों में लगाने की। गांधीवादियों के प्रयासों सफल क्या होने थे, क्योंकि कांग्रेसी सरकारें ही गांधीवाद या गांधी के आदर्शों को दफना चुकी थी। लेकिन दलित राजनीति करने वाले दलों, रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी इत्यादि दलों ने भी कभी भंगियों की दशा को मुद्दा नहीं बनाया। आरक्षण की राजनीति सभी दल करते हैं, किंतु दलितों में दलित भंगी कर्म के कष्ट निवारण व जो मानवता के नाम पर सबसे बड़ा दगा है उसे हटाने के लिए प्रयास या आंदोलन किसी ने नहीं किया, वामपंथियों ने भी नहीं। सुलभ शौचालय योजना ने थोड़ी राहत जरूर पहुंचाई है, लेकिन जब तक पूरे देश के स्तर पर सभी कस्बों, गांव, शहरों में मल निकासी की आधुनिक फ्लश प्रणाली विकसित नहीं की जाती और सिर पर मैला ढोने का सबसे बर्बर, असभ्य व मानवता के नाम पर बदनुमा धब्बा नहीं मिटाया जाता, तब तक दलित आंदोलन की स्थिति प्रारंभिक चरण में ही कही जाएगी। अरुण ठाकुर व मोहम्मद खड़स ने महाराष्ट्र में भंगी जाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी विस्तार से चर्चा की है। मुस्लिम समाज में मलकानी, लालबेकी व शेख भंगियों की दशा का वर्णन है, जबकि हिंदू समाज में वाल्मीकि, मिचताल, भंगी, चूहड़ा आदि जातियों की दशा का चित्रण किया गया है। मुसलमानों के यहाँ शिक्षा व विशेषतः नारी शिक्षा की दशा अत्यंत दयनीय है। पूरी भंगी जाति कर्ज के बोझ से दबी है, इस तथ्य को भी इस अध्ययन में उभारा गया है। प्रसिद्ध लेखक विश्राम बेडेकर ने मुंबई में मराठी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा था, गंदगी में काम करने वालों लोगों के हिस्से भारत में ही नहीं यूरोप में भी अस्पृश्यता की जाती है, लेकिन औद्योगिकीकरण के बाद यूरोपियन समाज में अस्पृश्यता का सफाया हो गया। सवाल यह है कि भारत में अस्पृश्यता का सफाया कब होगा? कांशीराम, मायावती, रामदास, अठावले, प्रकाश अंबेडकर, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव आदि इस मुद्दे को लेकर क्या कर रहे हैं? मायावती व फूलन देवी ने आत्मसम्मान की बात कही है। भंगी जाति के लिए सबसे बड़ा आत्मसम्मान का प्रश्न इस बात से जुड़ा है कि पूरे देश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा तुरंत समाप्त हो और इस पेशे से जुड़े लोगों को तुरंत वैकल्पिक काम देने के उपाय हों। भंगी समाज को इस पेशे को छोड़ने में स्वयं अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। 2 दिन की हड़ताल बड़े बड़े उच्च जातीय व्यक्तियों को अकल इस संदर्भ में ठिकाने ला देती है। 21वीं सदी में प्रवेश करते समय भारत एकमात्र असभ्य वर्वर देश होगा यदि तब तक भारत में इस अमानवीय प्रथा का अंत न हुआ तो। मैं भंगियों, नरक, सफाई आदि पुस्तकें इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, इसलिए ये अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। काश दलित राजनीति नेता भी ये पुस्तकें पढ़ें और अपना राजनीतिक एजेंडा तय करें।